శాంతి. ఓం శాంతి. ఆజ్ రవివార్ హై ఔర్ హమ్ సభీ అవ్యక్త బాప్ దాదా కే మహావాక్య సునేంగే. అబ్ తక్ హమ్ 2009-10 ఇస్ సీజన్ కీ అవ్యక్త మూర్తియాం సున్ చుకే హై. పిచ్లే రవివార్ అంతిమ మూర్తి థీ 2009-2010 కే సీజన్ కీ, ఔర్ ఆజ్ సే 2010-2011 ఇస్ సీజన్ కీ మూర్తియాం శురూ కరేంగే. తో యహ పహలీ మూర్తి హై సీజన్ కీ 2010 కీ, 2010-11 కీ సీజన్ కీ పహలీ మూర్తి, జిస్మే బాబా నే హమ్ బచ్చో కో బహుత్ నషా చడాయా హై. బాబా హమ్ బచ్చో కో కిస్ రూప్ మే దేఖ రహే హై. బహుత్ సుందర్ శబ్దో మే బాబా నే కహా హై కి బాప్ బచ్చో కో, బాప్ దాదా బచ్చో కో తీన్ తక్త్ నశీన్ దేఖ రహే హై. తీన్ తక్త్ कौन से है हमारे तीन तख्त? पहला तख्त है भ्रकुटी तख्त. अब वो भ्रकुटी तख्त तो हर एक के पास है, क्योंकि सब आत्माएं अपने भ्रकुटी तख्त पर विराजमान है, तो हर एक आत्मा के पास है. लेकिन जो महत्वपूर्ण तख्त है, दूसरा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त. अब उस दिल तख्त पर कितने चढ़े हैं, कितने बैठे हैं, क्योंकि उसके आधार पर ही विश्व का तख्त मिलना है. तो ये तीन तख्त नशीन बाबा हमें देख रहे हैं. भ्रकुटी तख्त नशीन, बाबा के दिल तख्त नशीन, और तीसरा भविष्य विश्व तख्त नशीन. तो भविष्य विश्व तख्त नशीन होने का आधार संगम पर कितना बाबा के दिल तख्त नशीन है उस पर आधारित है, और कितना समय तख्त नशीन है बाबा के दिल के, उस अनुसार भविष्य का भी उतना समय तख्त है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? बाबा के दिल तख्त नशीन पर सदा विराजमान होगा, होना होगा. तो कैसे रहेंगे? जब बाबा के पूर्ण रूप से श्रीमत पर चलेंगे, इतना पक्का निश्चय होगा, ब्रह्मा बाप को पूरा फॉलो करेंगे, बहुत कुछ बातें ये सब हो तब बाबा के दिल तख्त पर हम बैठ सकेंगे, और फिर उस आधार पर भविष्य तक भी मिलेगा. तो आज की सारी मुरली इसी पर है. सुनते हैं बाबा के महावाक्य. आज 14/6/2026 है, और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 24/10/10 की, पहली मुरली सीजन की 24/10/10 की. और उस समय तो पहला जो टर्न होता था, अधिकतर डबल विदेशियों का टर्न होता था. डबल विदेशी बहुत आते थे, तो पहले टर्न में बहुत आते थे. तो बाबा उनको भी देख रहे हैं, बाकी तो सबको देख रहे हैं. हेडिंग है समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष. क्या करना है? समय तेजी से दौड़ रहा है, तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ. यही बाबा चाहते हैं. समय की रफ्तार प्रमाण अभी विशेष स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने में तीव्रता लाओ और साथ में क्या करो, मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो, भिन्न भिन्न किरणें दो। हाँ, कितनी प्रकार की किरणें देते हैं ना, गुणों की कई किरणें हैं, शांति की किरणें, प्रेम की किरणें, शक्ति की किरणें, ये सब किरणें दो। मनसा द्वारा आत्माओं को भिन्न भिन्न किरणें दो। आज चारों ओर के परमात्म तख्त नशीन, ब्रकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह परमात्म दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है, जो ब्राह्मण नहीं है के लिए परमात्म दिल तख्त नहीं है। ये परमात्म दिल तख्त सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए ही है। ब्रकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। क्यों हमारे ही भाग्य में? क्योंकि इसी तख्त के आधार पर भविष्य का तख्त मिलता है। तो वो भविष्य के तख्त नशीन तो ब्राह्मण बच्चे ही बनेंगे, तो इसीलिए भगवान का दिल तख्त के अधिकारी भी हम ब्राह्मण बच्चे हैं। ब्रकुटी का तख्त तो सबके पास है, लेकिन परमात्म तख्त सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के ही भाग्य में है। ये परमात्म तख्त विश्व का तख्त दिलाता है। परमात्म दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। तो तीनों तख्त के अधिकारी आत्माएं आप ब्राह्मण ही हो। ये परमात्म तख्त कितना श्रेष्ठ है, है ना, बहुत श्रेष्ठ है परमात्म दिल तख्त। और कोई युग में परमात्म तख्त प्राप्त नहीं होता है। क्यों श्रेष्ठ है? पहला कारण है कि ये केवल संगम पर ही प्राप्त होता है परमात्म दिल तख्त, और किसी युग में परमात्म तख्त प्राप्त नहीं होता है। ये परमात्म तख्त गाया भी जाता है, है ना, बहुत गायन है ना अकाल तख्त का। वहाँ ग्रंथ अमृतसर में तो अकाल तख्त वो खास ग्रंथ वहाँ रखते हैं, बहुत उस तख्त का महत्व है। ये परमात्म तख्त कितना श्रेष्ठ है और कोई युग में परमात्म तख्त प्राप्त नहीं होता। इस परमात्म तख्त का गायन भी है। परमात्म तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी किस रूप में पूजे जाते हैं? जो परमात्म दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं उनकी पूजा किस रूप में होती है या उनका गायन किस रूप में होता है? तो अधिक ये परमात्म तख्त के अधिकारी भक्ति मार्ग में भी माला के मणकों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। रुद्र माला, विष्णु की माला, वैजंती माला, इनके रूप में गाए और पूजे जाते हैं। कोटों में कोई के रूप में गाए जाते हैं। हाँ, कोटि जन दुनिया में और केवल 108। तो बाबा कहते हैं कोटि में कोई के रूप में गाए जाते हैं। बड़ी भावना से एक एक मणके को कितनी ऊंची दृष्टि से देखते रहते हैं। तो आप सबको फखुर है ना, है फखुर, है फखुर। इतना नशा है कि हमारा गायन और पूजन माला के रूप में होता है। है फखुर कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकता है। है ना फखुर कि हमारे सिवाय कोई भी इस तख्त का अनुभव नहीं कर सकता है। लेकिन अब लेकिन बाबा को क्यों कहना पड़ा, लेकिन आप सब ब्राह्मणों का तो जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, ये बाबा मानते हैं। आपके लिए ये तख्त गले का हार है, तो इतना नशा रहता है। बाबा ने तो कह दिया कि आपका ये अधिकार है, लेकिन इतना नशा रहता है कि भगवान के दिल तख्त के अधिकारी है हम। ये नशा और खुशी सबको सदा स्मृति में रहती है। अब बच्चे कहते हाँ नशा रहता है, लेकिन फिर बाबा सदा शब्द जोड़ते हैं। सदा ये नशा और खुशी स्मृति में रहती है। हम कौन हैं? इसका निश्चय और नशा रहता है। बाबा तो कितना नशा चढ़ाते हैं, लेकिन ये नशा हमारा कायम रहता है, सदा रहता है। बाप दादा तो ऐसे तीन तख्त के अधिकारी बच्चों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ अधिकारी बच्चे, वाह। फिर बच्चे कहते हैं वाह बाबा वाह, और बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह। स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं, जो दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, जो विश्व तख्त नशीन बच्चे होंगे और अभी भ्रकुटी तख्त नशीन बच्चे हैं, तीनों तख्तों के मालिक बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को ऐसे बाबा कहते हैं, स्वयं बाप भी ऐसे बच्चों की महिमा गाते हैं। तो नशा है हम कौन हैं? जितना नशा हो, जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा। नशा कितना होना चाहिए, निश्चय के प्रमाण ही होगा। तो होना चाहिए पूर्ण नशा, उसके लिए चाहिए पूर्ण निश्चय। पर पूर्ण निश्चय होगा तभी पूर्ण नशा होगा। तो जितना निश्चय होगा उतना ही नशा होगा। और निश्चय का नशा अंदर में नहीं रहेगा, वो नशा आपके चेहरे और चलन में भी दिखाई देगा। कोई कोई हमारे अंदर तो है वो निश्चय और नशा, पर चेहरे और चलन में दिखाई नहीं देता, तो फिर कैसे बाबा मानेंगे कि वो निश्चय और नशा है। तो बाबा कहते हैं, तो ये निश्चय और नशा आपके चेहरे और चलन से भी दिखाई देगा। जिसको निश्चय है उसको नशा जरूर होता है। ऐसे नहीं निश्चय है पर नशा नहीं है, ऐसे नहीं, निश्चय है तो नशा जरूर होता है। बाप दादा भी अभी हर बच्चे के चेहरे और चलन द्वारा आत्माओं को अनुभव कराना चाहते हैं। हमारे चेहरे और चलन से और आत्माओं को भी अनुभव कराना चाहते हैं। वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं, वाणी द्वारा करते हैं ना। आप लोगों का ज्ञान बहुत अच्छा है, अभी बोलते हैं तो वाणी द्वारा तो अनुभव करने लगे हैं। अभी अनुभव करने का कार्य शुरू हो गया है। पहले तो सुनते थे, समय सोचते थे। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। सुनते तो थे पर फिर सोचते थे, ये कहते तो है ठीक भी लगता है पर पता नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं अभी आप ब्राह्मणों की स्थिति का प्रभाव वो अनुभव करने लगे हैं कि इनों की स्थिति भी कितनी ऊंची है। अभी तो देखो बहनों को बुला करके अवार्ड देते हैं ना, तो स्थिति देखते हैं ना। तो आत्माओं की, आप ब्राह्मण आत्माओं की स्थिति का प्रभाव अनुभव करने लगे हैं। तो अपने आप को चेक करो कि मैं सारे दिन में कितना समय परमात्म दिल तख्त नशीन रहता हूँ। अब कैसे, आप चेकिंग करेंगे कि कितना समय सारे दिन में मैं परमात्म दिल तख्त नशीन रहता हूँ। क्यों क्यों बाबा कहते चेकिंग करो, क्योंकि ये दिल तख्त ही विश्व का राज्य प्राप्त कराने का आधार है। तो इस दिल तख्त के आधार से जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। चलो महाराजा महाराजा न भी महारानी न भी बने, लेकिन राज घराना तो उनका बहुत बड़ा होगा, वो भी तो रॉयल घराने में आना भी बड़ी बात है। तो बाबा कहते जितना समय आप दिल तख्त के अधिकारी रहते हो, उतना ज्यादा समय भविष्य में राज्य घराने में अधिकारी बनते हो। तो चेक करना कि जब से मैं ब्राह्मण बना हूं, अब करो चेकिंग, जब से मैं ब्राह्मण बना हूं कितना समय दिल तख्त नशीन बना। अब बाबा कहते तख्त पर तो नंबरवार बैठेंगे, जो भविष्य का तख्त होगा वो तो नंबरवार बैठेंगे, सब तो नहीं बैठेंगे उस एक तख्त पर, तख्त तो एक ही होगा तो उसमें तो नंबरवार बैठेंगे, लेकिन इसके आधार से सदा राज्य फैमिली में घराने में तो अधिकारी बनेंगे ना। अभी अगर दिल तख्त नशीन बनेंगे तो भविष्य में सदा राज्य फैमिली में घराने में तो अधिकारी बनेंगे। तो चेक किया है कभी, अब हर एक सोचे चेक किया है कभी, दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो? कैसे दिल तख्त से उतर जाते हैं? हाँ, जब कोई भी अवज्ञा करते हैं तो दिल तख्त से उतर जाते हैं ना। तो दिल तख्त से उतर तो नहीं जाते हो, अपना हिसाब निकालना, क्योंकि इसके आधार से आप सदा राज्य घराने में आएंगे। चेक करना कि तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते हैं, या तो तख्त पर बैठेंगे या तो मिट्टी में पांव रखेंगे। तख्त को छोड़ कभी मिट्टी में पांव तो नहीं रखते, 63 जन्म के संस्कार अनुसार देह भान रूपी मिट्टी में तो पांव रखा। बहुत देह भान, देह अभिमान, देह अहंकार, तो बाबा कहते वो तो मिट्टी में जैसे पांव रखना है। तो 63 जन्म के संस्कार अनुसार देह भान रूपी मिट्टी में पांव रखा। एक है देह भान, ये शरीर रूपी दुंब जो आत्मा के साथ है उसका हर वक्त भान, और दूसरा है देह अभिमान। हाँ, देह अभिमान में तो थोड़ा थोड़ा विकार आ जाता है, और देह अहंकार तो अहंकार का तो चरम स्वरूप। तो एक है देह भान और दूसरा है देह अभिमान। देह अभिमान की मिट्टी गहरी है, लेकिन देह भान ये भी मिट्टी है आत्म। इसलिए बाबा कहते शरीरी बनो शरीरी बनो, क्योंकि ये देह भान की मिट्टी भी बाबा कहते ये भी मिट्टी है। लोग भी कहते हैं ना, जब मनुष्य चला जाता है और वो अर्थी को ले जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरथी, रथी चला गया तो केवल रथ बच गया, तो अर्थी हो गई, और उसको फिर जलाते हैं। तो लोग भी कहते हैं ना कि जब मनुष्य चला जाता है और फिर जलाते हैं शरीर को, तो यही कहते हैं ना कि मिट्टी मिट्टी में मिल गई। अंतिम संस्कार करते हैं तो पांचों ही तत्व जो शरीर के हैं, वो पांच तत्व अपने अपने, हर एक तत्व अपने अपने तत्व में मिल जाता है, तो मिट्टी मिट्टी में मिल गई। तो चेक करो, मिट्टी में पांव तो नहीं जाता? देह भान में आना अर्थात मिट्टी में पांव रखना। बाप दादा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए 3 तख्त दिए हैं, क्योंकि लाडले हो ना, सिकिलदे भी हो और लाडले भी हो, तो जो लाडला बच्चा होता है उसको दो स्थान मिलते हैं। लाडले बच्चे को दो स्थान मिलते हैं, छोटा बच्चा होता है ना और बहुत लाडला होता है तो उसको दो स्थान कौन से मिलते हैं माँ के, एक तो उनको झूला मिलता है, माँ झूले में उनको सुलाती है, और दूसरा माँ की गोदी मिलती है, गोद मिलती है, या तो वो गोद में रहता है या तो झूले में रहता है। ये सिकिलदे लाडले बच्चों के लिए होता है। तो जो लाडला बच्चा होता है उसको झूले में या गोदी में रखते हैं, गोद में माँ उनको सुलाती है, मिट्टी में पांव रखने नहीं देती। तो जो तीन तख्त के अधिकारी हैं उन्हों के लिए बाप दादा ने कितने भिन्न भिन्न झूले दिए, सोचो तो सही, कितने प्रकार के बाबा ने हमें झूले दिए हैं। कभी शांति के झूले में झूलो, कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्रेम के झूले में झूलो, तख्त और झूले इसी में ही पांव रखना है। और जब झूले पर होते हैं तो पांव नीचे तो नहीं होते ना, ऊपर ही होते, तो तख्त और झूले इसी में ही पांव रखना है। कई बच्चे पूछते हैं, अब बाबा से प्रश्न करते हैं कि हम भविष्य में कहाँ आएंगे, कौन सा पद पाएंगे, क्या बनेंगे, तो बाप कहते हैं जितना समय से आए हो उतने समय में चेक करो कि मेरा पांव कितना समय हुआ है, जितना समय हुआ है बाबा का बने उतना ही समय झूले में या तख्त पर रहा हूं, झूले या तख्त पर रहा हूं उतना समय जब से बाबा का बच्चा बना हूं, उतना ही भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे। ये उसकी उसकी माप है, उसी अनुसार भविष्य में रॉयल घराने में रहेंगे, रॉयल प्रजा में भी नहीं आएंगे, रॉयल घराने में आएंगे। तो यह हिसाब हरेक अपना अपने आप निकालो, दूसरे को नहीं देखना ना ये कितना है वो कितना नहीं, खुद को देखना, आप अपना हिसाब निकालना। हरेक चाहता क्या है, रॉयल घराने राज्य घराने में ही रहें। तो अब भी जितना समय मिलता है, हाँ अभी जितना समय मिलता है, क्योंकि समाप्ति तो अचानक होनी है, फिर बाबा याद दिला रहे अचानक, समाप्ति तो अचानक होनी है, तो जब तक समाप्ति हो तब तक अब भी चेक करेंगे तो जितना समय ज्यादा बाप की गोद में तख्त पर झूले में रहेंगे उतना समय रॉयल फैमिली में रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। अभी जितना समय ज्यादा बाप की गोद में तख्त पर और झूले में रहेंगे उतना समय रॉयल फैमिली में रॉयल घराने में भाग्य प्राप्त करेंगे। तो बाप दादा हर बच्चे को सारा समय 21 जन्म ही रॉयल घराने में, चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी, दोनों युग में रॉयल फैमिली में रहने का अधिकार दे रहा है। लेकिन अधिकार लेना ये हर बच्चे के ऊपर है, बाबा तो दे रहा है पर लेना ये हर बच्चे के ऊपर है। ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ना, तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है, हम सबका प्यार ब्रह्मा बाबा से भी है, शिव बाबा से तो है ही है पर ब्रह्मा बाबा से भी है, तो ब्रह्मा बाप का भी आप बच्चों से प्यार है। ब्रह्मा बाप आप बच्चों को साथ साथ रॉयल घराने में देखना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो महाराजा बनेंगे तो बाबा यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी हमारे रॉयल फैमिली में आए, तो रॉयल घराने में देखना चाहते हैं। आप क्या समझते हो, बाबा पूछते हैं, क्या समझते हो? ब्रह्मा बाप के आसपास रॉयल घराने में रहने वाले हो या थोड़ा समय रहेंगे? पूरा समय रहेंगे या थोड़ा समय रहेंगे? फिर दूर तो नहीं जाना चाहते हो ना, नजदीक रहना चाहते हो सदा, दूर तो नहीं जाना चाहते हो ना। तो सुनाया कि इसका आधार क्या है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी तो रॉयल घराने में राजाई में ही तो रहेगी ना। तो बाबा कहते सदा उनके साथ रहना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है? सुनाया ना, उसका आधार है संगम युग का। संगम युग पर कितना निकट है, बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो आप सभी कहते हो। क्या कहते हो बाबा को? ब्राह्मण साथ है, चाहे अव्यक्त रूप में है लेकिन साथ है। अभी तो साथ है ना, चाहे साकार में थे चाहे अभी भी अव्यक्त रूप में भी ब्रह्मा बाबा साथ है। अभी बाप दादा ने देखा कि बच्चों को माया भी अब तक छोड़ती नहीं है। अब आई माया की बात, अब माया अभी तक बच्चों को छोड़ती नहीं है। उनका भी प्यार है, बाबा का तो प्यार है ही है, पर माया का भी प्यार है। और आजकल दो रूपों में विशेष माया भी चांस लेती है। अब कौन से दो रूप है जिसमें माया अधिक चांस लेती है? दो रूप में आती है, एक है व्यर्थ संकल्प, इस रूप में माया आती है, और दूसरा है कहीं कहीं कभी कभी ये भी लहर है कि जो मैंने किया व मैंने सोचा वही राइट है। मैं जो कहता हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं जो करता हूँ वही राइट है। मैं अभिमान का मैं आ जाता है, वही राइट है। मैं कम नहीं हूँ। ये लहर फैली हुई है ना। इंचार्ज जो होता है वो फिर दूसरों को ऐसे डांटेगा, हाँ ये ठीक नहीं, मैं ही जो कहता हूँ राइट है। अगर वो कहेगा भी कि नहीं ऐसे नहीं, मैं जो कहता हूँ वही राइट है, तो वो ये लहर फैली हुई है, मैं ही राइट हूँ। लेकिन जो कनेक्शन में आते हैं या निमित्त बने हुए हैं, वो भी आपके विचार को साथ देते हैं। आप इंचार्ज हो, आप कहेंगे मैं ही राइट हूँ, पर वो जो आपके साथ में है, कनेक्शन में है, वो भी ऐसे समझते हैं कि आप राइट हो, कि वो भी साथ देते हैं। दूसरों को भी, दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए। वो भी कहे हाँ ऐसे नहीं, मैं ही राइट हूँ। उनसे पूछो क्या समझते हो ये राइट है। हमारी दादी जी ऐसे कभी नहीं कहती थी मैं ही राइट हूँ, कभी नहीं कहती थी दादी जी। सवेरे सवेरे आती थी, क्लास में आती थी और कहती थी आज बाप आज ऐसे ये विचार आया मेरे मन में। आप लोग क्या समझते हो क्या समझते हो ये होना चाहिए? तो सब हाथ उठाते हैं। माना दादी जी वेरिफिकेशन लेती थी, ऐसे नहीं अभी जो मैंने सोचा है वही करना है, नहीं। दादी सबसे पूछती थी, फिर मीटिंग करती थी, फिर मीटिंग में सबसे राय लेती थी और फिर उस अनुसार करती थी। तो इस अनुसार दादी ने कैसे सबका दिल जीता, ये नहीं कि मैं जो कहती हूँ वही राइट है, नहीं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, दूसरों की भी वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए, माना वो भी हामी भरे कि हाँ ये राइट है। ये व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि दूसरों ने ऑब्जेक्शन उठाया, मान लो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं ऐसे नहीं, तो उसमें कितना व्यर्थ संकल्प जाता है। तो ये व्यर्थ संकल्प टाइम वेस्ट करते हैं, इसलिए बाप दादा रोज के मुरली मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए होमवर्क में रोज देते हैं। क्या देते हैं? रोज होमवर्क में अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ, हाँ ये बाबा होमवर्क हमें देते हैं, अगर मनन करो या मनन करते करते मगन हो जाओ तो ये राज, तो ये रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? क्योंकि मन बुद्धि बिजी नहीं है, तो इसीलिए व्यर्थ बातों में जाता है मन बुद्धि। तो ये होमवर्क बाबा कहते हैं क्या करो, मनन करो, या मनन करते करते मगन हो जाओ, ये काम करो तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। तो ये रोज का होमवर्क मन को बिजी करने का साधन है। सुनना और मनन करना या मगन हो जाना, ये बाप दादा रोज का होमवर्क इसलिए देता है। जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज्यादा दे देते हैं, होता है ना स्कूल में टीचर उनको बहुत होमवर्क दे देती है कि घर में जाकर के ये करके आना और सुबह मैं देखूंगी, तो वो बच्चे का सारा टाइम वो होमवर्क करने में ही घर में बिजी होता है और बातों में नहीं। तो जैसे बच्चों को होमवर्क इतना ज्यादा दे देते हैं जो उनको उनकी बुद्धि करने में ही बिजी हो जाती है होमवर्क को, ऐसे रोज की मुरली उसमें चारों ही सब्जेक्ट्स का होमवर्क है। हर मुरली में चारों ही सब्जेक्ट्स का होमवर्क है, मनसा का भी है, वाणी का भी है, और कर्म का भी अटेंशन और दिव्यता का इशारा, ये होमवर्क है। जो बाबा मुरली में कहते हैं वो प्रैक्टिकल में हमको होमवर्क के रूप में दिन भर करना है। तो होमवर्क में बिजी रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प के आने की मार्जिन नहीं रहेगी। इस विधि को अपनाते रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प स्वतः ही आपसे विदाई ले जाएंगे, क्योंकि बाप दादा ने देखा याद की यात्रा पर सभी का नंबर वार अटेंशन है। बाबा की याद में बैठना है, इसमें सबका नंबर वार अटेंशन है, वाचा सेवा में भी अटेंशन है, लेकिन अभी अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार को परिवर्तन करना, ये स्वभाव संस्कार जिसको रॉयल रूप में आप कहते हो नेचर, मेरी ये नेचर है, मेरा ये स्वभाव है, भाव नहीं है पर क्या करें, स्वभाव ऐसे कहते हैं, ये धारणा की सब्जेक्ट अभी भी रॉयल रूप में आती रहती है। तो बाप दादा आजकल यही इशारा देते हैं कि जो भी धारणाओं में कमी होती है उसको अभी विशेष अटेंशन दो, धारणा में जो कमी है उस पर विशेष अटेंशन दो। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि अभी धारणा में ये मुख्य धारणा का अटेंशन दो, कोई भी बात हो गई तो चेक करो, सेकंड में फुल स्टॉप दे सकते हो। कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, उसमें बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो क्या उसको एक सेकंड में फुल स्टॉप पूर्ण विराम दे सकते हो? कि चाहते तो फुल स्टॉप हो लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क। अब बातें बढ़ती, उसने वो कहा, फिर उसने वो कहा, उसने वो कहा, फिर कहेंगे भाई अच्छा चलो भूल जाओ ड्रामा, हाँ ड्रामा करके भूल जाओ। अब ड्रामा कह तो दिया लेकिन ड्रामा कहने के बाद भी फिर भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मुख से तो कह दिया ड्रामा, माना फुल स्टॉप नहीं लगाया ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो चाहते तो हो कि फुल स्टॉप लग जाए लेकिन हो जाता है क्वेश्चन मार्क, फिर भी प्रश्न उठते ही रहते हैं। पहले ड्रामा कह के सोचा कि अभी नहीं सोचेंगे इसके बारे में, फुल स्टॉप नहीं लगता, आधा फुल स्टॉप लगता है, कॉमा है ना, अर्ध विराम लग जाता है, पूर्ण विराम नहीं लगता है, आधा फुल स्टॉप लगता है, और फिर और मात्रा भी बन जाती है। आगे चलकर ऐसे सरकमस्टांस आने वाले हैं, तब आगे की बात बाबा सावधान कर रहे हैं, ऐसे सरकमस्टांस आएंगे, परिस्थितियां आएंगी जो आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा एक सेकंड में, ऐसी परिस्थितियां आएंगी उस समय क्वेश्चन मार्क, ये क्यों लगा, हाँ ये आश्चर्य मार्क, अच्छा ऐसे भी हुआ क्या, आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य मार्ग को ठीक करने लगो इतना समय भी नहीं मिलेगा, फुल स्टॉप ही लगाना पड़ना होगा, इतना समय ही नहीं मिलेगा। जो आश्चर्य चिन्ह भी लगाओ या प्रश्न चिन्ह भी लगाओ या अर्ध विराम भी लगाओ, सेकंड में फुल स्टॉप की आवश्यकता होगी। इसका अभ्यास काफी समय पहले का चाहिए, ऐसे नहीं उस समय हो जाएगा, पहले का चाहिए, तब समय पर विजयी बन सकेंगे। तो हलचल के समय जब संस्कार स्वभाव का पेपर हो उसके लिए अभी से ऐसे समय में अभ्यास करो तो बहुत समय का अभ्यास आगे चल आपका बहुत सहयोगी बनेगा। पूर्ण विराम लगा, चल हो गया, फुल स्टॉप ड्रामा, तो आगे फिर संकल्प नहीं चलना चाहिए। तो ये अभी जो अभ्यास करेंगे ये बहुत समय का अभ्यास अंत में काम आएगा, बहुत सहयोगी बनेगा। तो बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाते हैं तो हर एक के पुरुषार्थ को चेक करते हैं, क्या चारों ही सब्जेक्ट्स में पुरुषार्थ तीव्र है व साधारण है। तो क्या देखा, चारों सब्जेक्ट्स की बातें बाबा ने बच्चों में देखी, तो क्या देखा, समय की रफ्तार प्रमाण अभी पुरुषार्थ में सदा तीव्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है, तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। तो बाप दादा इशारा दे रहा है समय तो तीव्र गति से समीपता के नजदीक आ रहा है, उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए, स्वभाव संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। अभी बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाना चाहते हैं, ब्रह्मा बाप समान बनाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य भी है बाप समान बनना ही है, शिव बाप समान भी ब्रह्मा बाप समान भी, इसके लिए सबसे सहज साधन क्या है, ब्रह्मा बाप समान बनना है तो सहज साधन क्या है, इसका सहज साधन है ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। कैसे करेंगे ब्रह्मा बाप को फॉलो, टैली करो, भेद करो, हाँ कि इस समय अगर ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते, तो मुझे भी ऐसा ही करना है। तो ब्रह्मा बाबा के साथ उस समय भेंट करो, टैली करो, जो भी कर्म करो पहले टैली करो, मिलान करो, ब्रह्मा बाबा क्या करते तो मुझे भी वैसा ही करना, मिलान करो। ब्रह्मा बाप का ये कर्म या बोल या संकल्प है, मैंने जो कह दिया क्या ब्रह्मा बाबा ऐसे कहता, मैंने जो कर दिया वो ब्रह्मा बाबा ऐसे करता, जो मैंने सोच लिया ब्रह्मा बाबा ऐसे सोचता, तो ब्रह्मा बाप का ये कर्म या बोल या संकल्प है। कहा भी जाता है, वैसे भी कहावत है, पहले सोचो फिर करो, बोलने के पहले क्या कहते हैं, पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो कि अब ये जो मुख से बोल निकलेंगे इसका परिणाम क्या होगा, तो पहले तोलो फिर बोलो। अंग्रेजी में भी ये बहुत सुंदर कहावत है, लुक बिफोर यू लीप, कभी पहाड़ पर है अभी आप कूदना चाहते हो तो पहले देखो ना कितना गहरा है, क्या कूदेंगे तो क्या बचेंगे अगर ऐसे कूदेंगे तो लुक बिफोर यू लीप, कूदने से पहले देखो। तो इसीलिए कुछ भी कार्य करने से पहले सोचो, सोच समझ कर कर्म करो। तो बोलने के पहले तोलो फिर बोलो। तो सुना बाप दादा अभी क्या चाहते हैं, आप भी चाहते तो वही हो ना, कि हम वही करें जो बाप दादा करते हैं। जब रू रिहान करते हो ना तो बाप दादा बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं बच्चों की, बाबा से बातें करते हो तो बाबा मीठी मीठी बातें सुनते हैं, उमंग की बातें भी बहुत अच्छी करते हो, ये करके दिखाएंगे वो करके दिखाएंगे, ये करना है ये होना है, संकल्प तो बहुत उमंग के करते हो लेकिन कर्म तक आने में कुछ बदल जाते हो, कर्म तक आने में बदल जाते हो, बदल जाते हैं, कुछ होते हैं, हाँ कुछ तो करते ही हैं, बाकी कुछ बदल जाते हैं। बाकी बाप दादा भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा के प्लान जो बनाते हो वो सब पसंद करते हैं। प्रोग्राम्स भी जहाँ तक अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना प्रोग्राम भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अभी जितना वाचा द्वारा या भिन्न भिन्न विधियों द्वारा कर रहे हो, सफलता भी है, बाप दादा खुश भी है, सिर्फ अभी क्या करो, अभी मनसा द्वारा अनेक आत्माओं को सुख की किरणें, शांति की किरणें, खुशी की किरणें, प्रेम की किरणें पहुंचाना है। ये सेवा भी साथ साथ करो, अपने ही संस्कार परिवर्तन या दूसरों के संस्कार को सहयोग देना, इसमें टाइम कईयों का ज्यादा जाता है। हाँ, संस्कार परिवर्तन करने में भी टाइम जाता है ना, उसको समझाते हैं वो समझता नहीं है, फिर समझाने की कोशिश करते, उसकी बजाय ये किरणें दो मनसा द्वारा, इसमें टाइम कईयों का ज्यादा जाता है। तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना है ना, कई आकर कहते हैं बहन जी मैं कितना उनको समझाता हूँ समझता ही नहीं है, तो मुख से आप बोलेंगे नहीं समझेगा, बस उनको किरणें दो, मनसा सेवा करो, उनकी बुद्धि को टच करो, संकल्प श्रेष्ठ करके, और कैसे उसकी बुद्धि में अपने आप आएगा, तब परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं तो मनसा सेवा द्वारा भिन्न भिन्न किरणें आत्माओं को देना, इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यक पड़ेगा, क्योंकि समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, क्योंकि समय ही नहीं होगा तो बैठ के हम समझाएं ये समय नहीं होगा, तो इसका अटेंशन आगे चल के बहुत आवश्यक पड़ेगा। उसके ऊपर भी ध्यान देते रहो कि किरणें देनी है उनको, उनकी मनसा सेवा करनी है। जो बच्चे समझते हैं कि ये सेवा मैं करता रहता हूँ, वो हाथ उठाओ, अब हाथ उठाओ, जो ये समझते हैं मैं ये सेवा करता रहता हूँ, करती रहती हूँ, हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत थोड़े हैं, सब नहीं करते वो हाथ, अच्छा कर रहे हैं, चलो जो भी कर रहे हैं उनको तो मुबारक है, और जो नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, मनसा सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां बनेगी जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का मेल मुश्किल हो जाएगा, वो तो मिल भी नहीं पाएंगे आपस में, मिले जो उसको समझाए वो भी नहीं हो पाएगा, तो न सुनने वाले न सुनाने वाले दोनों का मेल नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोनों सेवा अभी से जितना हो सके उतनी आदत डालो, मनसा और वाचा दोनों आदत डालो, मन बिजी भी रहेगा तो मन मना भव होना सहज हो जाएगा, बाबा की याद भी रहेगी और सकाश देने का भी कार्य चलता रहेगा, तो बिजी रहेगा मन, मन बिजी होने से संस्कार स्वभाव को सहज परिवर्तन करने में मदद मिलेगी। तो अभी मुरली तो इतने तक थी, अभी बाबा के सामने ढेर सारे डबल विदेशी बैठे हैं, आज खास डबल फॉरेनर्स के मिलने का दिन है, बाप दादा को खुशी है, वाह डबल फॉरेनर्स वाह, बाप दादा को खुशी है कि विश्व के कोने कोने में जो बाप के कल्प पहले वाले बच्चे छिपे हुए हैं, तो विश्व की सेवा में डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हैं, कि इतना बड़ा संसार है, सब जगह बाबा का संदेश पहुंचाना वो भारतवासी तो नहीं कर सकते ना, तो विदेशी जो बाबा के बच्चे वो ही करेंगे। अभी भी देखो 21 जून आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, हमारे विदेश में जितने भी सेंटर्स हैं, हाँ जिन देशों में भी सेंटर्स है, वहाँ के जो इंडियन हाई कमीशन है या इंडियन एम्बेसी है, वो सब ब्रह्मा कुमारियों को निमंत्रण देते हैं कि आकर के हमारे एम्बेसी में भी आप लोग भी अपना मेडिटेशन करो। तो वो योगा डे तो मनाते क्योंकि सबको मनाना है, सब देशों को मनाना है, तो इन ब्रह्मा कुमारियों को बुलाते हैं। तो बहुत सेवा उस अनुसार भी विदेशों में चलती है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा को खुशी है कि विश्व के कोने कोने में जो बाप के कल्प पहले वाले बच्चे छिपे हुए हैं, तो विश्व की सेवा में डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हैं। और बाप दादा ने सुना कि हरेक अपनी अपनी एरिया में, गांव में या शहरों में जो रहे हुए हैं, जहां सेवा नहीं हुई है, वहां तक पहुंचने का प्लान बनाते रहते हैं। बहुत प्लान बनाते हैं। अभी जिन देशों में अभी बाबा की सेवा नहीं हुई है, वहां भी होनी चाहिए। 140 देशों में तो हुई है, और भी कई देश हैं। तो वहां तक पहुंचने का प्लान बनाते रहते हैं। इसकी मुबारक हो। नहीं तो जब समाप्ति होनी होगी, अभी अगर उन देशों की सेवा नहीं करेंगे तो जब समाप्ति होनी होगी, हालतें बदलेगी, तो आप सबको चाहे भारत चाहे विदेश बहुत बहुत उलहने देंगे कि आपने हमको बताया क्यों नहीं। उलहने मिलेंगे कि हमारा बाप आया और आपने हमें बताया ही नहीं, क्योंकि हमने उनकी सेवा नहीं की। तो वो उलहना देंगे कि आप बाप आया और हमको बताया नहीं। संदेश तो देते, बहुत उलहने मिलेंगे, इसीलिए अभी कर रहे हैं और ज्यादा कोई कोना रह नहीं जाए इसका प्रयत्न करना। बाकी बाप दादा डबल फॉरेनर्स या देश वाले दोनों बच्चे जो चारों ओर अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, उन्हों को देख खुश है, बहुत बहुत खुश है। क्यों क्यों बाप दादा बहुत बहुत खुश है? क्यों खुश है? अभी देश में विदेश में ये प्लान बना रहे हैं, बाप दादा को पसंद है। अभी भी बहुत प्लान्स विदेशों में बन रहे हैं। कल आज ही 14 तारीख है ना, आज न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा प्रोग्राम होना है, बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये भी देखो, अब न्यूयॉर्क जैसे शहर में होना है, तो और ब्रह्मा कुमारीज करने वाले हैं, प्रोग्राम कुछ आया है, तो उसी प्रकार और देशों में भी जरूर होगा। तो बाबा कहते हैं अभी देश में विदेश में ये प्लान बना रहे हैं, बाप दादा को पसंद है, किसी भी साधन से संदेश पहुंचना चाहिए। ये साइंस वास्तव में आप लोगों के लिए समय पर बहुत मददगार है। बाबा महिमा गाते हैं साइंस की, देखो इंटरनेट के माध्यम से ये सब कितनी सेवा बाबा की होती है, टीवी के माध्यम से। कई जो अभी लॉकडाउन था तो उस समय सब कुछ भाई ये नेट के द्वारा, जूम के द्वारा कितनी सेवाएं हुई। तो बाबा कहते हैं ये विज्ञान भी बहुत मददगार है। तो ये साइंस वास्तव में आप लोगों के लिए समय पर बहुत मददगार है। ये साधन दिन प्रतिदिन नए नए निकलते रहते हैं, उसको कार्य में निर्विघ्न बन लगाते जाओ। आप जहां भी मीटिंग करते हो सर्विस बढ़ाने की, बाप दादा वो सुनते हैं और खुश होते हैं कि बच्चों की बुद्धि अभी ऑल राउंड जा रही है साधनों को सेवा में लगाने के लिए। इसलिए जो भी आप प्लान बनाते हो वो बाप दादा सुनते हैं, चक्कर लगाते हैं ना। आप कहां भी मीटिंग करो, चाहे दिल्ली में करो, देश में करो, किसी भी शहर में करो, चाहे विदेश में, कहां भी करो, बाप दादा सब सुनते रहते हैं, है ना। बाबा के पास वो टीवी है, देखते भी रहते हैं। बाप दादा के पास भी साधन है, इसके लिए बाप दादा फॉरेन के एक एक देश से जो भी आए हैं, हर एक को क्या देते हैं? बहुत आ गए बच्चे विदेश के, तो बाबा कहते हैं जो भी फॉरेन के एक एक देश से जो भी आए हैं, हर एक को क्या देते हैं? बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। सिर्फ अभी थोड़ी तीव्रता लाओ, प्यार तो बाबा देते हैं, पर थोड़ी तीव्रता लाओ। प्लान को प्रैक्टिकल में नई नई बातें लाते रहो ना, प्लान को प्रैक्टिकल में नई नई बातें लाते रहो। देखो आपका ये यज्ञ आरंभ होने के थोड़े वर्ष पहले ये सब इन्वेंशन शुरू हुई है। इन्वेंशन सारी देखो अभी है ना, कितना अभी कितना बढ़ गया है सब साइंस के साधन। तो यज्ञ शुरू हुआ तो उसके बाद ही जैसे ये विज्ञान के साधन भी बहुत मिलते गए। साइंस भी आपकी सेवा की मददगार है, खूब लाभ उठाओ, आपके लिए ही मिलती है। अभी तो YouTube चैनल्स कितने बन गए हैं बाबा के बच्चों के भी, खूब जहाँ भी जाओ जिससे भी मिलो, हम आप लोगों को देखते हैं, हम आप लोगों को देखते हैं ऐसे कहते हैं। तो खूब लाभ उठाओ, आपके लिए ही निकली है। दिन प्रतिदिन देखो कितनी नई नई बातें अभी अभी निकल रही है। ये ड्रामा आपको सहयोग दे रहा है, साधन आपको सहयोग दे रहे हैं। अच्छा, अभी अच्छा कहने के बाद सभी सदा खुश तो हो ना, सदा खुश है। जो सदा खुश रहता है वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ भाई, जो सदा खुश रहता है। बाबा देख रहा है, यहाँ भी देख रहा है मधुबन को, सबने हाथ उठा रहे हैं, सब हाथ, माताएं बहने हाथ उठाओ, भाई तो उठा रहे हैं सब हाथ। खुश नहीं रहते हो? खुश रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई बात, जो जो सदा खुश रहता है वो हाथ उठाओ, सदा खुश। कोई बात हो जाए तो भी खुश, कोई बात हो जाए तो भी खुश, या कभी कभी हाँ ना खुश। बातें तो आती है ना, तो भी खुश रहते हो, रहते हो। बड़ा हाथ उठाओ, लो भाई बड़ा हाथ उठाओ सभी, अभी भाई भी हाथ उठाओ, बड़ा हाथ, छोटा छोटा नहीं, बड़ा हाथ। बाबा देख रहे हैं, तो बड़ा हाथ उठाओ। वेलकम करते हो ना, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसको भी वेलकम करते हो ना, घबराते तो नहीं हो, वेलकम करते हो, अनुभवी बनाते हैं। ये परिस्थिति जो आई आपको अनुभवी बनाती है, ये विघ्न अनुभव की अथॉरिटी को बढ़ाते हैं। माया आ गई, माया आ गई ये नहीं कहो, ये पेपर है। माया आ गई ये नहीं कहो, क्या कहो, ये पेपर है। माया माया कहते माया को आगे बढ़ाते हो, पेपर है ये। माया को तो आप जान गए हो, जान गए हो, कितने वर्षों से जान गए हो माया को। पहले तो माया को जानते ही नहीं थे, माया के ही वश थे, बाबा के बने तो माया को जान गए हो। तो कितने वर्षों से जान गए हो माया क्या है। हाँ, माया बाबा कहते हैं पेपर टाइगर है, पेपर। इसलिए माया से घबराओ नहीं, पेपर समझकर खुशी खुशी से पेपर दो और अनुभव की क्लास में आगे बढ़ो। ये क्लास बढ़ाता है, जो परिस्थिति आई वो पेपर आया वो आपको आगे बढ़ाता है। मूझना नहीं है क्या करूं कैसे करूं, ये क्या क्यों ये ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है। क्या करूं कैसे करूं ये ब्राह्मणों को सोचने का काम, ब्राह्मणों का सोचने का काम नहीं है। त्रिकालदर्शी हो, क्या क्यों कैसे ये उठ ही नहीं सकता है। त्रिकालदर्शी हो, जो होगा अच्छा ही होगा ना, कल्याणकारी होगा, तो क्या क्यों क्यों कहते हो। ये उठ ही नहीं सकता है क्योंकि त्रिकालदर्शी हो। पेपर आया, अनुभव की क्लास में आगे बढ़े। परीक्षा देते तो दूसरे क्लास में ट्रांसफर होते ना, आगे बढ़ते ना, प्रमोशन मिलती है। तो खुश हो, अभी तो अनुभवी बन गए हो और बनते रहेंगे। अच्छा, जो भी पत्र, अभी बच्चों के बहुत पत्र भी आए, विदेशी बच्चों के, भारत वाले बच्चों के, तो जो भी पत्र, फोन, जिन्हों के भी याद प्यार या संदेश बाप दादा के प्रति आए हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा अपने नैनों में समाते हुए याद प्यार या सर्विस समाचार या मन का पुरुषार्थ का समाचार दिया है, उन सबको बाप दादा मनसा द्वारा इमर्ज कर सुख की, शांति की, खुशी की किरणें दे रहे हैं। चाहे कोई ने यहाँ नहीं भेजा है लेकिन दिल में भी संकल्प किया, वो संकल्प भी बाप दादा के पास पहुँच गया है, भले लिखा नहीं पर संकल्प किया अपने देश में वो भी पहुँच गया है। अच्छा, चारों ओर के हिम्मते बच्चे मददे बाप, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, और इस वर्ष कोई न कोई अपने प्रति या सेवा केंद्र के प्रति या विश्व की आत्माओं के प्रति कोई न कोई ऐसा प्लान बनाना जो सेवा का बल और फल सर्व आत्माओं को प्राप्त हो जाए। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का विशेष दिल का याद और प्यार स्वीकार हो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपने तरफ आकर्षित जरूर करती है, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वो सैंपल बन सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं वो प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। स्लोगन, दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएगी। ना किसकी आंखें बंद हो रही है क्या? तो दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएगी। तो ये माया आ रही तो उसको कहो मेरा बाबा, हाँ मीठा बाबा, तो माया भाग जाएगी, आंखें खुल जाएगी। यह व्यक्ति इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। इसके लिए अभी अभी आवास से परे जितना ये अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा उतना संपूर्णता समीप दिखाई देगी। संपूर्ण स्टेज की निशानी है उनका पुरुषार्थ सरल होगा। याद की यात्रा, सर्विस दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं। जब दोनों में सरल सहज अनुभव हो तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। सहज भी हो सरल भी हो तब बाबा कहते हैं संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है, ये समझो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो।